नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न जमा किए जा चुके हैं और इनमें से करीब 91% रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को एक ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ ITR जमा किए गए हैं। इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई सत्यापन किया जा चुका है, जो कुल रिटर्न का 91% से अधिक है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए जा चुके रिटर्न में से 1.50 करोड़ से भी अधिक रिटर्न प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल 3 करोड़ ITR जमा किए जाने का आंकड़ा 7 दिन पहले ही हासिल किया जा चुका है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि देश को 2030 तक सभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश को 2030 तक 65% सार्वजनिक परिवहन के साधनों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। कांत ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक वाहन के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने पणजी में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा बदलाव से जुड़े कार्य समूह की चौथी बैठक के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति आयोग की तरफ से अलग से आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। नीति आयोग के पूर्व CEO ने कहा कि देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ ही ये जरूरी है कि रहने लायक अच्छा हो। हमें सबसे पहले दोपहिया और तिपहिया वाहनों को बिजली से चलने वाला बनाना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की 1 अप्रैल-जून तिमाही में 95% बढ़कर 882 करोड़ रुपए पहुंच गया। डूबे कर्ज में कमी और ब्याज आय में सुधार से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। पुणे के इस बैंक ने एक साल पहले ही समान तिमाही में 452 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजार को दी जानकारी में बैंक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की 1 अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय 5,417 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,774 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन अवधि में बैंक द्वारा अर्जित ब्याज साल भर पहले 3,457 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,789 करोड़ रुपए हो गया। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 38.80% बढ़कर 2,340 करोड़ रुपए हो गई। बैंक की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पहली तिमाही के अंत में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर कुल अग्रिम का 2.28% रह गई। ये एक साल पहले इस अवधि में 3.74% पर थी। ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि टाटा समूह ब्रिटेन में एक नया EV बैटरी संयंत्र या गीगा फैक्ट्री स्थापित करने में 4 अरब पाउंड से अधिक का निवेश करेगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला में हजारों नौकरियों का सृजन होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे देश के मोटर वाहन उद्योग के लिए अविश्वसनीय रूप से गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि ये ब्रिटेन के कार विनिर्माण उद्योग तथा उसके श्रमिकों की ताकत को दर्शाता है। ब्रिटेन की लग्जरी कार विनिर्माता जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है। ये 40 गीगावाट घंटे के शुरुआती उत्पादन के वाले संयंत्र का प्रमुख ग्राहक रहेगी। इसे यूरोप के सबसे बड़े कारखानों में बनाया जा रहा है। इस नई गीगा फैक्ट्री का काम 2026 में शुरू होगा। अमेरिका की 2100 से अधिक छोटे और मझोले आकार की IT कंपनियों के एक संघ ITServ ने अमेरिकी सांसदों से H-1B कोटा को मौजूदा के 65,000 से दोगुना करने का आग्रह किया। इस संघ में शामिल ज्यादातर कंपनियों का स्वामित्व भारतीय अमेरिकियों के पास है। ITServ का कहना है कि देश में कुशल श्रम बल की भारी कमी है और इसके लिए H-1B वीजा का कोटा बढ़ाने की जरूरत है। H-1B एक गैर आवर्जक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को ऐसे पदों पर नियुक्ति की अनुमति देता है जिनके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। IT कंपनियां हर साल इसके जरिए भारत और चीन से हजारों पेशेवरों की नियुक्ति करती है। ITServ के 240 से अधिक सदस्य मंगलवार को पहली बार व्यक्तिगत रूप से अमेरिका की राजधानी में जुटे। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की 1 अप्रैल-जून तिमाही में 2 गुना से अधिक होकर 86 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। खर्च घटने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 38 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय घटकर 961 करोड़ रुपए रह गई, जो इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,048 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च भी घटकर 842 करोड़ रुपए रह गया, जो 2022-23 की पहली तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 1,000 करोड़ रुपए रहा था। श्रम, रोजगार और कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों की मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का हल ढूंढने के मकसद से भारत के अध्यक्षता वाले G20 समूह के रोजगार कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक इंदौर में बुधवार से शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दो दिन तक चलने वाली ये बैठक EWG के जोधपुर, गुवाहाटी और जिनेवा में आयोजित पिछली तीन बैठकों के प्रयासों को बल देकर मंत्रिमंडलीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों का अंतिम रूप प्रदान करने पर केंद्रित है। इस बैठक में 86 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।